नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ सौमित्र बोस। सौमित्र, स्वागत आपका।
नमस्कार, गुड इवनिंग।
शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। मस्कट में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी के ग्रुप ए में भारत और जापान का मुकाबला जारी। सिंगापुर में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डिंग लिरेन और डी गुकेश के बीच चौथी बाजी कल खेली जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने आज कैनबरा में भारतीय क्रिकेट टीम की एक स्वागत समारोह में मेजबानी की। तो शुरुआत करते हैं आज बैडमिंटन से, क्योंकि लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा है। वहां पर लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इनके अलावा भी कई भारतीय खिलाड़ियों ने अगले दौर में जगह बना ली है। सुनते हैं आकर्षिता से ये रिपोर्ट।
पुरुष सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त लक्ष्य को इसराइल की डेनिल डुबोवेंको के खिलाफ जीत हासिल करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उन्होंने ये मुकाबला 21-14, 21-13 से जीत कर अंतिम 8 में प्रवेश किया। इसी वर्ग में आयुष शेट्टी ने मलेशिया के जस्टिन हो को 21-12, 21-19 से शिकस्त देकर अगले दौर में प्रवेश किया। मिराबा लुवांग मिसनाम ने 6 वरीयता प्राप्त आयरलैंड के नहात एनग्वेन को हराकर न सिर्फ अगले दौर में प्रवेश किया बल्कि उलटफेर भी किया। दूसरी वरीयता प्राप्त प्रियांशु राजावत को प्री क्वार्टर फाइनल में वियतनाम के ले डुकवाट के खिलाफ जीत हासिल करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। भारतीय खिलाड़ी ने ये मैच 21-15, 21-8 से जीता। इसी वर्ग में क्वालिफायर ऋत्विक संजीव सतीश कुमार चीन के वैंग झेंग जिन के वॉकओवर देने से क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। हालांकि पुरुष सिंगल्स में ही तीसरी वरीयता प्राप्त किरण जॉर्ज के कड़े मुकाबले में जापान के शोगो ओकावा के खिलाफ पराजय से भारत को झटका भी लगा। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु को अपने ही देश की इरा शर्मा पर 21-10, 12-21, 21-15 से जीत हासिल करने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ा। उन्नति हुड्डा ने थाईलैंड की पॉर्न पिचा के खिलाफ 21-18, 22-20 से जीत दर्ज की। श्रियांशी वाली शेट्टी ने अपने ही देश की दूसरी वरीयता प्राप्त मालविका बंसोन को आसानी से 21-12, 21-15 से हरा दिया। तस्नीम मीर ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में ईशान भटनागर और शंकर प्रसाद उदय कुमार विरोधी के खिलाफ वॉकओवर मिलने से क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। हरिहरन अमसा करूनन और रूबन कुमार की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पी कृष्णमूर्ति रॉय अपने जोड़ीदार के साई प्रतीक के साथ अंतिम 8 में पहुंच गए हैं। महिला डबल्स में रुतापर्णा पांडा और श्वेतापर्णा पांडा की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। प्रिया कोन जिंग बाम और श्रुति मिश्रा भी अगले दौर में पहुंच गई हैं। दूसरी वरीयता प्राप्त त्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपी चंद की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी पुनप्पा की टॉप सीड जोड़ी भी अंतिम 8 में पहुंची। मिक्स्ड डबल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त बी सुमित रेड्डी और सिक्की रेड्डी प्री क्वार्टर फाइनल में पराजित हो गए, लेकिन ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की 5वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी अगले दौर में पहुंच गई। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
तो सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं, लेकिन आज सौमित्रदा जिस तरह से संघर्ष करना पड़ा इस टूर्नामेंट में एक अनजान सी भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ पीवी सिंधु को, साफ संकेत है कि वो पूरी तरह से फिट नहीं है और अभी भी जो एक विनिंग मोमेंट होता है या एक फॉर्म होता है उसके लिए संघर्ष कर रही है।
ये देखिए, सिंधु का ये अभी ऐसा ही फॉर्म चल रहा है जैसा पेरिस में देखा, ओलंपिक्स में देखिए, और आज का जो मैच देखिए, ईरा शर्मा का रैंकिंग देखिए 147 और सिंधु का रैंकिंग देखिए 18। इसमें से फर्क पड़ता है कि जैसे ही आप तीन मैच में मैच स्ट्रेच हो रहा है, सिंधु नहीं कर पा रहा है
जी।
और आप देखिए, लास्ट उसने जीता जुलाई 2022, 2022 का उनका लास्ट टाइटल है,
दो साल से ज्यादा।
और देखिए कितने इतने कोच बदले हैं, फिटनेस का इश्यूज है, जीत नहीं पा रहे हैं, फर्स्ट राउंड में हार रहे हैं, और सिंधु को काफी कसरत करना पड़ेगा कि अपना वर्ल्ड रैंकिंग अंदर 10 के अंदर आने के लिए
जी।
मगर आज की मैच जो है, जो सिंधु की बात कर रहे हैं, तो इसी से एक साफ इंगित है कि फिटनेस के ऊपर उनको और भी काम करना पड़ेगा।
लेकिन अच्छी बात यह है कि लक्ष्य सेन आज काफी लय में दिखे, आसानी से उन्होंने मुकाबला अपना जीता और जो टॉप सीडेड खिलाड़ी हैं उनमें से भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि इस टूर्नामेंट में कहें तो बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं आए हैं, बड़े बड़े नाम यहां पर नहीं है, लेकिन जो भी नाम है उनमें भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन फिलहाल अच्छा दिखाई दे रहा है।
ये देखिए, लक्ष्य सेन का भी वैसे ही हाल है, वही जुलाई 2023 कनाडा ओपन में उसने लास्ट जीता है, उसके बाद काफी उनका जो करियर आप देखिए पेरिस के बाद, वो फिर भी इंजरी, और ये इससे निकलना पड़ेगा, उसका उम्र में आपको इंजरी से निकलना पड़ेगा। और कोई भी टूर्नामेंट हो, देखिए कोई भी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का टूर्नामेंट हो, जीतना जरूरी है क्योंकि इसमें से आपको पॉइंट्स हासिल करना पड़ता है और वर्ल्ड रैंकिंग अच्छा करने के लिए।
और बात अब हॉकी की। ओमान के मस्कट में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी में इस समय ग्रुप ए में भारत का मुकाबला जापान के साथ चल रहा है, और जो ताजा समाचार है उसमें 4 मिनट का खेल हुआ और दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर हैं। इससे पहले कल भारत ने अपने पहले मैच में थाईलैंड को 11-0 से हराया था। इस पूल में फिलहाल कोरिया की टीम अपने दोनों मैच जीतकर शीर्ष पर है। गोल औसत के लिहाज से भारत दूसरे नंबर पर है। जापान ने भी अपने पहले मैच में जीत दर्ज की थी। इस पूल में चीनी ताइपे और थाईलैंड भी शामिल हैं। पूल बी में मलेशिया अपने दोनों मैच जीतकर टॉप पर है। दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और मेजबान ओमान भी शामिल हैं। और जो आज का मुकाबला रहा बांग्लादेश और पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान की टीम 6-0 से जीत हासिल करने में सफल रही। अब चलते हैं शतरंज की तरफ। सिंगापुर में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन और भारत के डी गुकेश के बीच चौथी बाजी भारतीय समय के अनुसार कल दिन के 2:30 बजे से खेली जाएगी। प्रतियोगिता में आज विश्राम का दिन है। मुकेश से सुनते हैं ये रिपोर्ट।
शतरंज की बिसात पर नया विश्व चैंपियन बनने के लिए लिरेन और गुकेश के बीच कांटे का मुकाबला जारी है। 3 बाजियों के बाद अभी दोनों खिलाड़ी 1.5-1.5 अंकों के साथ बराबरी पर हैं। 12 बाजियों की इस चैंपियनशिप की चौथी बाजी में दोनों के पास आगे निकलने का मौका होगा। अब तक पहले गेम में लिरेन ने बाजी मारी, जबकि दूसरे गेम में गुकेश ने काले मोहरों से खेलते हुए गजब का संघर्ष दिखाया और मुकाबले को बराबरी पर समाप्त किया। तीसरे गेम में गुकेश ने 37 चालों के बाद लिरेन को हार के लिए मजबूर कर दिया था। अगर 18 साल के इस भारतीय खिलाड़ी को नया विश्व चैंपियन बनने की अपनी उम्मीदों को बनाए रखना है तो आगे की बाजियों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। कोई भी गलती उनके भारत के दूसरा शतरंज विश्व चैंपियन बनने की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। उन्हें मुकाबले को टाई ब्रेक तक ले जाने से भी बचना होगा, क्योंकि इस मामले में उनका विरोधी खिलाड़ी महारत रखता है। डिंग की ये खासियत है कि वो अपने श्रेष्ठ फॉर्म में मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर भी जीत हासिल कर लेते हैं। वो शतरंज की बिसात पर सबसे विश्वसनीय और मजबूत खिलाड़ियों में से एक शुमार हैं। हालांकि पिछले एक साल में वो अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म तक नहीं पहुंच सके हैं और उनकी ये कमजोरी गुकेश को फायदा पहुंचा सकती है। गुकेश इस टूर्नामेंट में अपनी जबरदस्त फॉर्म की बदौलत फेवरेट के रूप में उभरे हैं। उन्होंने शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने में बड़ी भूमिका निभाई थी। 1886 से सिर्फ 17 खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। अगर गुकेश खिताब जीतने में सफल होते हैं तो वे 18वें शतरंज विश्व चैंपियन होंगे। उनके पास ये खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बनने का भी मौका है। भारत की तरफ से अभी तक सिर्फ विश्वनाथन आनंद के पास ही शतरंज का विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल है। उन्होंने 5 बार ये खिताब जीता है। इस समय गुकेश की विश्व रैंकिंग 5 है, जबकि डिंग लिरेन 23वें नंबर पर हैं। वर्तमान फॉर्म और प्रदर्शन के आधार पर गुकेश के पास चैंपियन बनने का बड़ा मौका है, लेकिन उनकी निगाह फिलहाल चौथी बाजी जीतने पर होगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
निश्चित रूप से इस समय जो गुकेश की निगाह होगी चौथी बाजी पर ही टिकी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हर बाजी पर वो फोकस करेंगे, न कि पूरे टूर्नामेंट पर वो फोकस करेंगे।
देखिए चेस में वही है, हर बाजी पे आपको जीतना है। और श्रोता को ये भी बताना जरूरी है कि 14 राउंड खेला जाएगा
जी।
जो पहला प्लेयर जो 7.5 अंक में पहुंचेंगे वो वर्ल्ड चैंपियन होंगे। तो 14 राउंड ज्यादा नहीं है, 3 राउंड हो चुका है, 4th राउंड होने वाला है और देखते देखते ये खत्म होने वाला है। इसलिए हर एक राउंड में अच्छा प्रदर्शन देना और पॉइंट लेना ये जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि 14 राउंड और फर्स्ट प्लेयर जो 7.5 अंक में पहुंचेंगे वही वर्ल्ड चैंपियन होंगे।
फॉर्म के लिहाज से अगर देखें तो इस समय गुकेश जबरदस्त फॉर्म में है। दूसरी तरफ अगर लिरेन की बात करें, वो पिछले 1.5 साल से करीब संघर्ष कर रहे हैं अपने उस फॉर्म को, पीक फॉर्म को हासिल करने के लिए। तो अच्छा मौका है युवा खिलाड़ी 18 साल के गुकेश के पास।
फॉर्म से लिहाज से आप देखें तो इंडियंस का, गुकेश का खास करके जो प्रदर्शन रहा है कंसिस्टेंट रहा है। जैसे आपने कहा डिंग लिरेन का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, मगर हाल ही में एक चीज आपको बताना जरूरी है कि जो कलकत्ता में टाटा चेस हुआ है वहीं पे मैग्नस कार्लसन जिस तरह से कमबैक किया है, चेस में कमबैक हो सकता है
जी।
और ये पूरा माइंड गेम है, फॉर्मेशन गेम्स है, ओपनिंग क्लोजिंग के ऊपर बहुत कुछ, एंड गेम स्टार्टिंग गेम के ऊपर शुरुआत। तो ये जो पकड़ है, क्योंकि जो लास्ट गेम जो हुई थी वो टाइम ट्रबल में डिंग लेरेन हार गया था। इसको ऊपर ये जरूरी है कि टैक्टफुली कैसा खेला जाए और फोर्थ मैच देखिए क्या होता है।
और अब बात क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने 30 नवंबर से प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ दो दिवसीय अभ्यास मैच से पहले आज कैनबरा में भारतीय क्रिकेट टीम की एक स्वागत समारोह में मेजबानी की। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने सभी साथियों से उनको मिलवाया। श्री अल्बनीज ने इस दौरान पर्थ टेस्ट में भारतीय टीम की जीत के नायक रहे जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली की प्रशंसा की। इस मौके पर कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की संसद में भाषण भी दिया। सुनते हैं वो भाषण।
Honourable Prime Minister, respected guests, both the members of the team, very good evening. Thank you, sir. Thank you for having us. India and Australia, we go back a long way. Whether it's playing the sport, whether it is creating relations. Over the years, we have enjoyed coming to this part of the world, playing cricket and enjoying a variety of culture in the country. And obviously, Australia is one of the challenging places to come and play cricket because of the passion people have, the competitiveness every player possesses, which is why, it's always been a great challenge to come here and play cricket. We've had some success in the past. We've had a very good momentum, the previous week. As we look to build on that momentum, so do want to enjoy the culture that Australia has, a variety of cities. Gives us a different, feeling. And yeah, we do love coming here and enjoy our cricket.
जैक एडवर्ड्स के नेतृत्व में प्रधानमंत्री एकादश ने भी अल्बनीज से मुलाकात की। अभ्यास मैच मनुका ओवल में खेला जाएगा जो 6 दिसंबर से एडिलेड में होने वाले दिन रात्रि टेस्ट मैच के लिए अच्छी तैयारी के तौर पर काम करेगा। भारत ने 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर श्रृंखला के पर्थ में खेले गए शुरुआती टेस्ट मैच को 295 रन से जीता था। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर रनों के लिहाज से टीम की सबसे बड़ी जीत है। और अब इस जीत के बाद डे नाइट टेस्ट मैच होने वाला है, उसको आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि डे नाइट टेस्ट मैच में भारत का प्रदर्शन अब तक इतना अच्छा रहा नहीं है।
पिंक बॉल टेस्ट में जो भी है, मगर जिस तरह से पर्थ में हमने जीत हासिल की है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में एक जो डर है वो तो प्रकट पाएगा। मगर ये जो आपने जो बोला कि जो टूर मैच, पहला टूर मैच कैनबरा, वो काफी फोकस रहेंगे रोहित शर्मा के फॉर्म के ऊपर। हम चाहेंगे कि उसने अभी उनका बेटा का जन्म हुआ, वो जो गुड लक उनके ऊपर आए और रोहित शर्मा अपना प्रदर्शन करें और एडिलेड टेस्ट में भारत का अच्छा सा नेतृत्व दे।
और एक अच्छी खबर ओमान से आ रही है, जहां पर भारत ने लीड ले लिया जापान के खिलाफ मुकाबले में, 1-0 हो गया स्कोर। और क्रिकेट की बात को और आगे बढ़ाएं तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ होने वाले दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए अपनी 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में मिचेल मार्श की जगह ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर को शामिल किया गया है। दोनों देशों के बीच ये टेस्ट मैच एडिलेड में 5 दिसंबर से खेला जाएगा। उधर हैली मैथ्यूज को अगले महीने भारत दौरे पर आने वाली वेस्टइंडीज की 15 सदस्यीय महिला टीम का कप्तान बनाया गया है। मेहमान टीम इस दौरे पर 3 2020 और 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। खबर एक और क्रिकेट से, डरबन में श्रीलंका और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। मैच के आज दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 100 रन बना लिए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी के स्कोर 191 रन के जवाब में श्रीलंका की टीम सिर्फ 42 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका के 5 खिलाड़ी खाता भी नहीं खोल सके। दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को यानसेन ने 7 विकेट लिए। फुटबॉल की खबर, इंडियन सुपर लीग आईएसएल में इस समय केरला ब्लास्टर्स एफसी का सामना एफसी गोवा के साथ चल रहा है। यह मुकाबला कोच्ची के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जा रहा है। हाफ टाइम तक गोवा 1-0 से आगे है। भारत की 68 सदस्यीय टीम एशिया प्रशांत बधिर खेलों में हिस्सा लेगी। इस प्रतियोगिता का आयोजन 1-8 दिसंबर तक क्वालालंपुर में होगा। यह टूर्नामेंट बोलने और सुनने में समस्या से ग्रसित व्यक्तियों के लिए एशियाई खेलों के समतुल्य है। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल की पैरा एथलीट रिंचेन युडॉल ने बहरीन के मनामा में आयोजित पहली विश्व पैरा पूम से ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। घड़ी की सुइयां कह रही हैं हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो सौमित्र उदय स्टूडियो हमारे लिए शुक्रिया।
नमस्कार
दोस्तों, आपसे कल फिर होगी मुलाकात नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।